राजयोग शिविर के अंतर्गत आज के इस दूसरे सत्र में राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय, इस विषय पर हम देखेंगे। परंतु कई बार मन के अंदर ये सवाल जरूर आता है कि आखिर भी राजयोग करने की जरूरत क्या है, आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है। अगर आध्यात्मिकता न हो जीवन में तो क्या नुकसान हो जाएगा, और आध्यात्मिकता को जीवन में ले आने से क्या कुछ प्राप्ति होगी, कुछ फायदा होगा। ये मनुष्य के मन में जरूर आता है। महाभारत की बात याद आती है कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया उस समय वो इतना नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि बार बार भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। क्या भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा, जो ऐसी मनोदशा हो गई, जहां विजय उसकी निश्चित थी, फिर ऐसी मनोदशा क्यों? और उस समय भगवान ने सर्वप्रथम उसको कौन सा ज्ञान दिया? आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया, और यही आध्यात्मिक ज्ञान से उसको मोटिवेट किया जो अंत में युद्ध करने लिए तैयार हो गया। भावार्थ ये कि आध्यात्मिकता में ऐसी कौन सी खास बात है जो व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, उत्साहित कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। क्योंकि जीवन भी संघर्ष है, और ये संघर्ष में कई संघर्षों से तो हम सहज रीति से पार हो जाते हैं, लेकिन जीवन में कई संघर्ष ऐसे भी होते हैं कि जब व्यक्ति हिम्मतहीन हो जाता, उदास हो जाता, नर्वस हो जाता और भगवान से भी भरोसा उसका कम होने लगता है। ऐसे समय के लिए आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के अंदर शक्ति का संचार करता है, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जिस योग से तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। राजाओं के राजा अर्थात कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार को प्राप्त करना। योग का सरल अर्थ है संबंध, जोड़ या मिलन। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, तो योग माना संबंध जोड़ना। मनुष्य का संबंध जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते भौतिक योग है। जब हमारा समय के साथ संबंध होता है, कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता, तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। जब भी किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है। जब किसी के जीवन में इष्ट देव की कृपा अनुभव होने लगती है तो कहते इसके जीवन में एक दैवी योग चल रहा है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। परंतु ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो, पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। ये जीवन को देखे, जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ, अकेला शरीर है तो जीवने नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवने नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए शरीर को वही पांच तत्व चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। इंसान जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेशन होने लगता है, जी घबराता है। और कुदरत ने एक समान ये पांचों तत्व सारे संसार की आत्माओं के लिए बनाकर रख दिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। ठीक इसी तरह शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए आत्मा को भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। शरीर को पांच तत्व चाहिए, आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज सवेरे के सत्र में आपने देखा होगा, शांति चाहिए, और भी कुछ चाहिए? पवित्रता चाहिए। आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण कौन से हैं? सर्वप्रथम हर आत्मा को ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण उसकी वास्तविकता है जो हर इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए। दूसरे शब्द में कहे तो यही 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब उसको चार्ज करने के लिए जनरेटर तो चाहिए, बिना जनरेटर के चार्ज तो नहीं हो सकती है। तो जनरेटर है परमात्मा। परमात्मा से चार्ज होने के लिए उसके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, बिना कनेक्शन जुड़े चार्ज तो नहीं होगा। और यही कनेक्शन को कहा गया है योग। लेकिन जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक फिर भी एक ही मान्यता रहती है, जहां परमात्मा का विषय आया वहां अनेक मतमतांतर हो जाते हैं। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी और वहां पर एक बहन ने मुझे कहा कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे प्रश्न पूछता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं, मुसलमान धर्म में एक अल्लाह क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है, बेटा हिंदू धर्म में सब भगवान है। वो बच्चा कहता है सब भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक होना चाहिए। और अगर ये सब भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो अगर ये सब भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? अब वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है। और इसीलिए जब भी वो मां उस बच्चे को कहती है बेटा मंदिर चलो कोई विशेष दिन पर, वो बच्चा मना कर देता है। कहते हैं मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि कहां मैं अपने मन को एकाग्र करूं, किस में करूं। इससे तो मैं चर्च में ना जाऊं जहां एक गॉड है, तो कम से कम मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकता हूं। और इसीलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता है, और उसके लिए वो खुद को जिम्मेवार समझती है कि बचपन से हम ही अमेरिका आ गए, हमारे पास ही अपने धर्म का ज्ञान नहीं था, इसीलिए शायद मैं आज अपने बच्चे को गाइड नहीं कर सकती हूं। ये उसकी प्रॉब्लम थी। परंतु जो भारत में रह रहे हैं, जिनके पास अपने धर्म का, अपने संस्कृति का ज्ञान है, आज मैं अगर आप सबसे पूछूं कि मान लो कि कल को आपके बेटे ने आपसे यही सवाल किया कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है, मुसलमानों में एक अल्लाह, क्रिश्चियन में गॉड क्यों है, तो क्या उसका कोई जवाब आपके पास है? और अगर नहीं है और उसने भी मंदिर जाना मना कर दिया, तो क्या उस समय आपको दुख होगा? क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे जैसे नहीं है कि हमारे माता पिता ने कहा बेटे ये सब भगवान है, सबको नमन करो, हमने सबको नमन करना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चे हर बात में सवाल यही पूछते क्यों, और उस क्यों का अगर जवाब न मिले वो उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सत्य क्या है? एक बार हमने एक कार्टून देखा और कार्टून के अंदर एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहले कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, है ना? अगर भगवान है तो सबूत दो। अब सोचने की बात है कि जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी मतों को पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है? यह सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा नहीं, क्या कहें? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? क्योंकि सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे, सत्य क्या है? जैसे वो कहानी दिखाते हैं कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाके देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक ने पैर पकड़े तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ी तो कहा दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, एक ने सुंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और एक ने कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? क्या ये सभी सत्य है कि खंभे जैसा भी था, दीवार जैसा? क्या ये सभी सत्य है? नहीं है। क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पाते थे? क्या कहेंगे?